नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने कभी फर्जी एनकाउंटर को सही ठहराया है? इसका जवाब ठीक से याद करने के बाद ही दीजिएगा। ऐसे लोगों की संख्या हजारों लाखों में निकल आएगी जिन्होंने हैदराबाद पुलिस के एनकाउंटर पर जश्न मनाया था और सही ठहराया था। उन सभी को पता था, पता है कि पुलिस के एनकाउंटर कई बार गलत निकल चुके हैं और गलत होते भी हैं, तब भी लोगों ने हैदराबाद पुलिस पर फूल बरसाए थे। 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद पुलिस ने उसी जगह पर 4 आरोपियों का एनकाउंटर किया जहां दिशा की हत्या की गई थी, जिनके शरीर को बलात्कार के बाद जला दिया गया। लोग पुलिस पर गुलाब के फूल बरसाने लगे और पुलिस झूठी कहानियां बनाने लगी कि कैसे ये आरोपी भाग रहे थे, पुलिस से हथियार छीन लिया था और पुलिस पर गोली चला रहे थे। लोग पुलिस की हर बात पर यकीन कर रहे थे और इस पुल के ऊपर खड़े होकर तारीफों के पुल बांध रहे थे। केवल फूल बरसाने वालों को ही पुलिस पर भरोसा नहीं हुआ, बल्कि देश के लाखों लोगों ने पुलिस की हर बात पर यकीन किया और हैदराबाद पुलिस का जय जयकार। औरतों ने पुलिस को राखी भी बांधी। छह दिसंबर 2019 के दिन किया गया यह एनकाउंटर फर्जी निकला है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 387 पन्नों के ऑर्डर में बताया है कि यह एनकाउंटर फर्जी था। इस एनकाउंटर की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस सिरपुरकर की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुलिस की बनाई हुई कहानियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ना ही कोई सबूत है। यह कहानी झूठी है कि चारों आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीन लिए, पुलिस पर हमला किया और अपने बचाव में पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। नई दुनिया, अमर उजाला जैसे अनेक अखबारों में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार हीरो की तरह छापे गए। जानिए कौन है सज्जनार टाइप की हेडलाइन छपने लगी। बताया जाने लगा कि 2008 में भी इस तरह का एनकाउंटर जनाब कर चुके हैं। अमर उजाला की हेडलाइन तो और भी गजब की है। हैदराबाद कांड, साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर सज्जनार को क्यों कहा जाता है एनकाउंटर मैन। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता है कि हैदराबाद एनकाउंटर में अहम भूमिका निभाने वाले आईपीएस अफसर वीसी सज्जनार से मिलिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस एनकाउंटर को फर्जी पाया है और 10 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या, झूठी सूचनाएं देने और सबूतों के मिटाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 6 दिसंबर 2019 के दिन सज्जनार की प्रोफाइल छापी है। वीसी सज्जनार हैदराबाद एनकाउंटर के पीछे का एक नरम दिल अफसर, ये लिखा है। इस तरह से तमाम मीडिया, तमाम अखबार, वेबसाइट और चैनलों पर सज्जनार रातों रात हीरो बना दिए गए। उस दिन सज्जनार ने हिंदी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम आपको प्राइम टाइम के पुराने एपिसोड से उनका यह बयान दिखा रहे हैं। हमें तो तब भी शक हुआ था, लेकिन बहुतों को लगा था कि कमिश्नर सही बोल रहे हैं।
विक्टिम का सेलफोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग, ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ, बर्न किया, उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं। उसको हम लोग वहाँ पे है करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करे तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करे तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग, दो लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे। A1 मोहम्मद के पास और A4 चिंतकुंटा चन्नकृष्ण के पास हमारा दो वेपन्स मिले। और इस मामले में हमारा दो ऑफिसर्स भी, एक SI और एक कांस्टेबल भी, SI वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड़ भी इंजर्ड हुआ। इन दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे। बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। इस मामले में हम लोग बाद में इस 4-5 दिन भी हम लोग बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किया इनके खिलाफ और इनका DNA प्रोफाइलिंग भी किया, विक्टिम फैमिली का भी किया। और ये लोग भी, हमको कुछ शक है कि ये लोग कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना में भी ऐसे ऑफेंस किए गए रहेंगे।
सोचिए उस वक्त पुलिस कमिश्नर एक झूठी कहानी देश के सामने परोस रहे हैं और देश यकीन कर रहा है और जश्न मना रहा है। जस्टिस सिरपुरकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि झूठी कहानी बनाई गई, फर्जी तरीके से एनकाउंटर किया गया। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार को मीडिया ने हीरो बनाया। उनकी तारीफ और बड़ी हो सके इसलिए कई जगहों पर गर्व से बताया गया कि 2008 में भी वीसी सज्जनार ने एसपी रहते हुए वारंगल जिले में ऐसा ही एनकाउंटर किया। सेम टू सेम कहानी। वारंगल के एनकाउंटर में भी आरोपी पुलिस से हथियार छीनकर भागे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे और बचाव में पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया। उस एनकाउंटर का तो पता नहीं। हैदराबाद एनकाउंटर की कहानी झूठी निकली है। जस्टिस सिरपुरकर आयोग ने उस एनकाउंटर के बारे में भी कमिश्नर से सवाल किया था। आपने जॉली एलएलबी पार्ट टू फिल्म देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि एनकाउंटर के खेल के पीछे क्या क्या होता है, फिल्मों में भी और असली जिंदगी में भी। 13 अक्टूबर 2021 की हेडलाइन 6 दिसंबर 2019 के हेडलाइन से काफी अलग है। 2019 में आईपीएस सज्जनार को एनकाउंटर मैन बताया जा रहा है। अक्टूबर 2021 के हेडलाइन देखकर हंसी आ सकती है। इसमें लिखा है तेलंगाना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वही क्वेश्चन मार्क, व्हाट्स दैट सेज वीसी सज्जनार। खबर के भीतर आईपीएस वीसी सज्जनार कहते हैं कि वे ना तो एनकाउंटर के विशेषज्ञ हैं और ना इसका मतलब जानते हैं। कुछ समझ में आया आपको? कायदे से यही सवाल मीडिया को तब करना था लेकिन मीडिया इन्हें एनकाउंटर मैन लिखकर हीरो बना रहा था। और जब मीडिया के बनाए गए इन हीरो साहब से सुप्रीम कोर्ट के आयोग ने पूछा कि मीडिया उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहता है, क्या कभी उन्होंने इसका खंडन किया, मीडिया में बयान जारी किया? तब आईपीएस वीसी सज्जनार जवाब देते हैं, उन्होंने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया और वे इस तरह के लेवल से सहमत भी नहीं। आयोग ने यह भी पूछा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दिशा एनकाउंटर का पैटर्न भी वही है जो वारंगल के समय के एनकाउंटर का है। तब उनका जवाब था कि वे वारंगल के एसपी थे जब एनकाउंटर हुआ था। यह हिस्सा 13 अक्टूबर 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। सोचिए जिन्हें एनकाउंटर मैन कहा जा रहा था, हीरो बनाया जा रहा था, वो जनाब कोर्ट के आयोग के सामने कहते हैं एनकाउंटर का मतलब ही पता नहीं है। डू यू गेट माय पॉइंट? एक और सॉलिड पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के इस आयोग ने 10 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। इसमें पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार का नाम नहीं है जिन्हें 6 दिसंबर 2019 के दिन पूरे देश में हीरो बनाया जा रहा था, जिनके बारे में मीडिया लिख रहा था कि इस एनकाउंटर के पीछे उनका दिमाग है, उनकी मुख्य भूमिका है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर देखिए, लोगों ने हैदराबाद के टॉप कॉप सज्जनार को हीरो बना दिया, जय पुलिस जय जय सज्जनार के नारे लगाए और उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया गया। कमाल है। हमने तय किया है कि हम एक बार भी लोगों की समझदारी पर सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। पुलिस की बनी बनाई कहानी पर आंखें मूंद कर यकीन करने वाले लोगों की जमात बहुत मुश्किल से धरती पर अवतरित होती है। जिन चार लोगों का एनकाउंटर हुआ उनमें से 3 नाबालिग थे। क्या अब आप उनके मां बाप का इंटरव्यू टीवी पर चलता हुआ देख रहे हैं? उनके इंसाफ के लिए भावनाओं का ज्वार देख रहे हैं? वह भीड़ कहां चली गई जो इंसाफ के नाम पर एनकाउंटर को सही ठहरा रही थी? क्या फर्जी एनकाउंटर से दिशा को इंसाफ मिल गया, जिसकी हत्या हुई थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ था? क्या हम जानते भी हैं कि असली अपराधी कहां हैं, कौन हैं? फ्लैशबैक में चलिए और देखिए कि कैसे बड़े बड़े लोगों ने एक फर्जी एनकाउंटर को सही ठहराया था, उनके ट्वीट को कैसे उस दिन हजारों लाइक्स मिल रहे थे। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का ट्वीट है, ग्रेट वर्क हैशटैग हैदराबाद पुलिस वी सल्यूट। साइना नेहवाल के इस ट्वीट को 40,000 लाइक्स मिले। इसके एक महीने के बाद साइना नेहवाल बीजेपी में शामिल हो जाती है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ट्वीट करते हैं कि कांग्रेचुलेशंस एंड हैशटैग जय हो टू हैशटैग तेलंगाना पुलिस फॉर शूटिंग डाउन द फोर रेपिस्ट इन एन एनकाउंटर। चलो अब जितने भी लोगों ने ऐसा घिनौना अपराध करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई थी उनके लिए खतरनाक से खतरनाक सजा चाहिए थी, मेरे साथ जोर से बोलो हैशटैग जय हो। ये अनुपम खेर के ट्वीट हैं। इस ट्वीट को 51,000 लाइक्स मिले थे, 6,468 बार दोबारा रीट्वीट किया गया और 3,000 से ज्यादा कमेंट आए थे। क्या आप इनमें से नहीं हैं? ठीक से याद कीजिए। अनुपम खेर के ट्वीट पर महेश राबरी ने ट्वीट किया है कि आज कोई सबूत नहीं मांगेगा, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो एनकाउंटर का सबूत मांगे उसे भी एक गोली दे देना चाहिए हैशटैग हैदराबाद पुलिस। देखिए लोग किस तरह से जोश में आकर सनकते हैं। आज का दिन हैदराबाद पुलिस के नाम, ये वो लड़का लिखता है हैशटैग सल्यूट टू हैदराबाद पुलिस। अनुपम खेर के ट्वीट के जवाब में किसी श्वेता पंडित ने लिखा है कि काश चरखा की जगह गोडसे के बारे में पढ़ाया गया होता। देखिए किस बात को किस बात से मिलाकर आपकी क्या हालत की जा रही है। बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी ट्वीट किया, लिखा कि हैदराबाद पुलिस को बधाई और कहा कि देश को पता चलना चाहिए कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा से ही होती रही। राज्यवर्धन राठौर के इस ट्वीट को 14,000 लाइक्स मिले, 2,357 रीट्वीट हुआ। क्या राठौर बताएंगे कि फर्जी एनकाउंटर से भी अच्छाई की जीत होती है? पब्लिक ओपिनियन का ऐसा बवंडर मचाया गया कि विपक्ष के नेता भी उसमें अपनी जगह बनाने लग गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर राबड़ी देवी और मायावती भी इसी तरह की बात करने लग जाती हैं और पुलिस की तारीफ होने लगती है। इस तरह से तमाम प्रभावशाली लोग जनता के कथित गुस्से का फायदा उठाते हुए, गुस्सा बनाते हुए माहौल के बीच में अपने लिए लाइक्स और रीट्वीट बटोरने के लिए अनगिनत लोगों के मन में यह बात पहुंचा देते हैं कि इस तरह से एनकाउंटर करना सही है। आम लोग भी बोलने लग जाते हैं एनकाउंटर सही है। कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में जिन रिटायर्ड अंकिलों ने एनकाउंटर को सही ठहराया था उन्हें इस प्राइम टाइम का लिंक भेजकर देखिए और पूछिए, आपको ग्रुप से बाहर कर देंगे। माहौल बनाने के लिए तरह तरह के सवाल पैदा किए जाते हैं कि आपकी बेटी के साथ होगा तो क्या करेंगे, लेकिन जिन माओं के चारों बच्चों का फर्जी एनकाउंटर हुआ उन्हें क्या जवाब देंगे? अब तो पता ही नहीं चलेगा कि वे बलात्कार के दोषी थे या नहीं। रामदेव का उस समय का बयान सुनिए, बता रहे हैं कि कैसे ऑन स्पॉट पुलिस और सेना को कार्रवाई करनी चाहिए।
जो इस तरह के अपराधी होते हैं, कलंक होते हैं, जिनसे पूरा देश, धर्म, संस्कृति बदनाम होती है, उनके साथ और जो आतंकवादी उनके साथ तो ऑन द स्पॉट हमारी पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को और सेना को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। जिन घटनाओं में संदेह नजर आता है उन घटनाओं को हमें आगे कोर्ट में ले जाना चाहिए, उसके ऊपर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें एविडेंस है उसके आधार पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसका रास्ता अपनाना चाहिए।
ऑन स्पॉट गोली मार देने के पीछे की राजनीति को ठीक से समझिए। अलग अलग समय में इस राजनीति के अलग अलग पैटर्न होते हैं। जब आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय का होता है तब तो भीड़ तुरंत ही तैयार कर बड़ी कर दी जाती है गोदी मीडिया आईटी सेल के जरिए कि ऑन स्पॉट ही फैसला होना चाहिए। पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल कर दीजिए तो आपको ही अपराधी बताया जाएगा और अब तो उस भीड़ की जरूरत भी नहीं, उसके आने से पहले बुलडोजर आ जाता है। विपक्षी दलों की सरकार के राज्य में आरोपी किसी भी समुदाय का हो बलात्कार की हर घटना पर तुरंत फांसी देने का दबाव बनाया जाता है और विपक्षी दलों की सरकारें भी वही भाषा बोलने लग जाती हैं। लेकिन जब ऑन स्पॉट फांसी और एनकाउंटर की बात करने वालों की सरकार के राज्य में बलात्कार होता है तब यही बात कहने पर कहा जाता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष को जाने से रोका जाता है और यही नहीं पीड़िता के शव को आधी रात के बाद पुलिस की सुरक्षा में जला दिया जाता है। हैदराबाद एनकाउंटर में पुलिस की वाहवाही करने वाले लोग भूल जाते हैं क्योंकि आरोपी के समाज के लोग पंचायत करने लगे थे और उनका भी एक वोट बैंक है। मीडिया उस पंचायत को कवर करने लग जाता है। यूपी के हाथरस कांड की रिपोर्टिंग भी कभी फ्लैशबैक में जाकर देखिएगा। 6 दिसंबर 2019 के दिन एनकाउंटर का पूरे देश में जश्न मनाया गया। एनकाउंटर की कहानी पर आंखें मूंदकर यकीन किया गया और इससे बने माहौल का फायदा उठाते हुए यूपी पुलिस भी ट्वीट कर बताने लग जाती है कि उसने कितने एनकाउंटर किए हैं। यह पुलिस का ही ट्वीट है 6 दिसंबर 2019 का, जिसमें लिखा है, जंगल राज अब अतीत की बात हो चुका है। 2 साल में 103 अपराधी मारे गए हैं, 1859 घायल हुए हैं, 5178 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। असम में भी एनकाउंटर का ऐसा चलन बढ़ गया, कई एनकाउंटरों पर सवाल उठे हैं और हाईकोर्ट के सामने उन्हें चुनौती दी गई है। जस्टिस सिरपुरकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अभियुक्तों पर जानबूझकर इस तरह से गोलियां चलाई गईं ताकि वो मर जाएं। इसके कोई सबूत नहीं कि वे हथियार छीनकर भाग रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे। आयोग की रिपोर्ट पढ़ने से पता चलता है कि हैदराबाद का एनकाउंटर केवल एनकाउंटर के मामले में ही फर्जी नहीं था। आपके स्क्रीन पर उन परिवारों के घर के वीडियो आते जाएंगे जिनके बच्चों को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया। इन साधारण घरों के बच्चों को पुलिस उठाकर ले जाती है, एनकाउंटर कर देती है। गोदी मीडिया और ट्विटर के जरिए समाज का बड़ा हिस्सा खून का प्यासा हो जाता है और एनकाउंटर का जश्न मनाता है। क्या वह वैश्य समाज, बदहवास नेता इनके घरों पर जाकर प्रायश्चित करेंगे? जस्टिस सिरपुरकर आयोग की रिपोर्ट में अभियुक्तों के परिवार वालों के बयान हैं। इनमें कुछ का कहना है कि गिरफ्तारी के वक्त नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ना ही कोई वारंट या मेमो दिखाया गया। कुछ के माता पिता का कहना है कि उन्हें तो टीवी न्यूज से पता चला कि क्या हुआ है। मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन, चिंता कुंता, चन्ना केशवालू में से 3 लोग नाबालिग थे, फिर भी पुलिस ने वाहवाही लूटने के लिए बालिग बताकर इनकी तस्वीरें मीडिया में जारी की। आयोग ने अपनी जांच में पाया है कि पुलिस ने जानबूझकर जानकारी छिपाई, जबकि पुलिस को भी शक था कि इनमें से 2 नाबालिग थे। आयोग ने काफी विस्तार से बताया है कि कैसे पुलिस ने उनके स्कूल जाकर डेट ऑफ बर्थ पता करने की कोशिश की, लेकिन तब भी नाबालिग वाली जानकारी को दबा दिया गया। आयोग की रिपोर्ट में एनकाउंटर के अलावा जांच और आरोपियों की पहचान को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। एनकाउंटर में मारे गए 4 लोगों की पहचान पी श्रीनिवास रेड्डी ने की, जो उस लॉरी का मालिक है जिस पर ये काम करते थे। आयोग ने रिकॉर्ड किया है कि पुलिस ने कहा कि एक अभियुक्त नवीन कुमार श्रीनिवास रेड्डी के साथ काम करता है, लेकिन बाद में श्रीनिवास रेड्डी कहते हैं कि नवीन को जानते ही नहीं। इससे तो नवीन की गिरफ्तारी पर ही गहरा संदेह पैदा होता है। सीसीटीवी फुटेज को लेकर भी कई तरह के दावे हैं। लॉरी के मालिक श्रीनिवास रेड्डी ने सीसीटीवी फुटेज देखने का जो समय बताया है उसमें और पुलिस के बताए समय में काफी अंतर है। यही ने एक आरोपी जोल्लू शिवा की पहचान श्रीनिवास रेड्डी ने सीसीटीवी फुटेज से की। आयोग ने लिखा है कि पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को कई घंटे बाद बरामद किया, श्रीनिवास रेड्डी के बयान के कई घंटे बाद। मतलब जब फुटेज पुलिस के पास ही नहीं था तब श्रीनिवास रेड्डी ने कैसे देखकर बता दिया कि वह शिवा है। यही नहीं, पुलिस का कहना है कि 3 सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि 7 से 8 फुटेज दिखाए गए। इतना ज्यादा अंतर है। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने श्रीनिवास रेड्डी कहते हैं कि उसे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया, ये बात भी है। यह वीडियो उस समय का है जब मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन, चिंता कुंता, चिन्ना केशवालू को गिरफ्तार किया गया था। इनका चेहरा ढका हुआ है। इनके साथ जो हुआ है, क्या उसमें वो लोग शामिल नहीं जो इनके एनकाउंटर पर जश्न मना रहे थे, जय हो लिख रहे थे? चाहे तो आप अनुपम खेर से ये सवाल पूछ सकते हैं। तो इस तरह से इन 4 को गिरफ्तार किया गया। इससे तो इनके आरोपी होने में भी गंभीर संदेह है। आपने सुना कि किस तरह पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार कह रहे थे कि इन सभी को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। आयोग ने यह भी लिखा है कि ऐसा लगता है कि लॉरी के मालिक पी श्रीनिवास रेड्डी को सिखाया पढ़ाया गया है। क्या यह भयानक नहीं है कि किसी बेकसूर को इस तरह से उठाकर एनकाउंटर कर दिया जाए, फिर कहानी बनाकर मीडिया में एनकाउंटर मैन टाइप का हीरो बन जाए और सांसद से लेकर अभिनेता जय जयकार करने लगे? 6 दिसंबर 2019 के प्राइम टाइम में हमने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाया था, आगाह किया था कि इस तरह के पब्लिक ओपिनियन के नाम पर किसी को मार देना ठीक नहीं। मायावती तक कह रही हैं कि यूपी पुलिस को हैदराबाद पुलिस से प्रेरणा लेनी चाहिए। पुरुषों के अलावा बहुत सी महिलाएं भी उस पब्लिक ओपिनियन को बनाने में लगी हैं और अपने बनाए ओपिनियन की आड़ में, उसके रिफ्लेक्शन में, प्रतिक्रिया में इस एनकाउंटर को सही ठहराए जा रही हैं। ये वही पब्लिक ओपिनियन है जो अखलाक और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को सरेआम मारते समय एक तरह से सोचता है, भीड़ के साथ खड़ा हो जाता है, और ये वही पब्लिक ओपिनियन है जो तेलंगाना पुलिस के एनकाउंटर को लेकर भीड़ बन जाती है। क्या पब्लिक ओपिनियन अब अदालत है? तो फिर अदालतों को फैसले से पहले ट्विटर पर जाकर देखना चाहिए कि आज का ट्रेंड क्या है। सभी को पता है कि इस घटना को लेकर गुस्सा है, महिलाओं में गुस्सा है, तो उस गुस्से में जगह बनाने के लिए महिला सांसद भी एनकाउंटर को सही बता रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में झारखंड में शशि भूषण मेहता के लिए वोट मांगा, जिन पर एक महिला टीचर की हत्या का आरोप है और इस मामले में शशि भूषण मेहता जमानत पर है। क्या स्मृति ईरानी का गुस्सा वैसा ही होगा जैसा तेलंगाना मामले में है? क्या वो संसद से यह जानकर इस्तीफा दे देंगी? यह जानकर उनके सहयोगी सांसद साक्षी महाराज बलात्कार और हत्या के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, बांगरमऊ से विधायक कुलदीप को बधाई देने के लिए मंत्रोच्चारण का प्रयोग कर रहे हैं, तो तब और अब स्मृति ईरानी क्या कर लेगी? जिस तेलंगाना पुलिस को लेकर सवाल उठ रहा था कि जब पीड़िता के परिवार वाले पुलिस के पास गए तो 2 घंटे तक कुछ नहीं किया, कहा कि किसी दोस्त से मिलने चली गई होगी, इसी मामले में 3 पुलिस वाले सस्पेंड भी हैं। जिस पुलिस ने उसके पहले एक और घटना होने पर इलाके में सुरक्षा तेज नहीं की, यह भी हो सकता है कि उसके पास जांच और सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन ना हो। अब इन सारे सवालों को धकेलते हुए इस मामले को एनकाउंटर के जश्न पर खत्म किया जा रहा है और पुलिस खलनायक से अब महान बना दी गई है। तेलंगाना पुलिस पर जो फूल बरसाए जा रहे हैं, ये तस्वीर बता रही है कि आम जनता में न्याय व्यवस्था को लेकर समझ और भरोसा कितना कमजोर हो गया है। कानून का सिस्टम लंबा वक्त लेता है या काम नहीं करता है, इसके नाम पर एनकाउंटर की थ्योरी को बिना जांचे परखे स्वागत के कांड में बदल दिया गया है। क्या वाकई इस कहानी पर कोई विश्वास कर रहा है कि जब पुलिस इन अपराधियों को लेकर सबूत इकट्ठा करने गई तब इन पर आरोपियों ने पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया, उसके हथियार छीन लिए और सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने गोली मार दी? क्या वाकई लोगों ने सोचना बंद कर दिया है कि फर्जी से लगने वाली इस कहानी पर फूल बरसाए जा रहे हैं? जब सबूतों के आधार पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा था तो इन पर आरोप साबित करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्या इसलिए एनकाउंटर किया गया कि पब्लिक ओपिनियन बदल जाएगी और स्वागत होने लगेगा, सांसद लोग भी स्वागत करेंगे? मुमकिन है 6 दिसंबर 2019 के इस प्राइम टाइम को देखकर कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप वालों को बहुत गुस्सा आया होगा कि पुलिस पर सवाल उठा रहा है। उस वक्त जब गोदी मीडिया से भीड़ का माहौल बनाया जा रहा था, हम लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। आज सही साबित हुए हैं। कहां गए वो लोग जो हैदराबाद एनकाउंटर की जय जयकार कर रहे थे, जो एक तरह से इस समाज में निर्दोष की हत्या का वातावरण बना रहे थे? न जाने कितने बेकसूर लोग अपराधी बनाकर जेल में डाले जा रहे हैं, उनका एनकाउंटर हो रहा है, उन्हें फांसी की सजा हो रही है। यह सिलसिला आज भी जारी है। राजस्थान के झालावाड़ का एक मामला है, मामला 2018 का है, 7 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और अनूप कुमार की बेंच ने अगर डीएनए रिपोर्ट के आधार पर संदेह न किया होता तो इस मामले का आरोपी कोमल लोधा फांसी पर चढ़ गया होता, बल्कि ट्रायल कोर्ट ने उसे फांसी की सजा तो सुना ही दी थी। हाईकोर्ट ने कोमल की फांसी की सजा बदल दी है आजीवन कारावास में। उसे अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा। जो बच्चा एक वकील तक नहीं कर सका, वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे मुकदमा लड़ेगा? कोमल लोधा तो गवाह था, उसने 2 आरोपियों के नाम बताए थे, मगर उसे ही आरोपी बना दिया गया और सजा भी सुना दी गई। कोमल को निचली अदालत से फांसी की सजा हुई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस ने दोषियों को बचाने व निर्दोष को फंसाने की कोशिश की है। इस मामले में फिर से जांच होगी। अदालत ने उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए हैं जिन्होंने कोमल को झूठा फंसाया। गिरफ्तारी के वक्त लोधा नाबालिग था। दैनिक भास्कर की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि पुलिस ने विधानसभा चुनाव से 4.5 महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई इस वारदात की गुत्थी को जल्द सुलझाने के नाम पर निर्दोष को बलि का बकरा बना दिया। हाईकोर्ट की टिप्पणी से पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने भी अनदेखा किया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने कोमल के स्कूल के प्रिंसिपल की गवाही पर विचार नहीं किया कि कोमल नाबालिग है। ट्रायल कोर्ट ने एक डॉक्टर की एक्सरे जांच पर भरोसा किया, उसकी उम्र 19 से 21 साल के बीच बता दी गई। हाईकोर्ट ने पाया कि वह व्यक्ति तो रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं था। इस रिपोर्ट के डिटेल भी भयानक है। जिस देश में जांच की यह हालत हो, उस देश में कैसे कोई पुलिस एनकाउंटर को इंसाफ समझ सकता है। कोमल के परिवार वाले तबाह हो गए, लेकिन बाकी लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 11 साल पहले की बात है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पुलिस ने 16 साल की एक लड़की मीना खलको को नक्सली बताकर मार दिया। न्यायिक जांच में नक्सलियों से मुठभेड़ का दावा भी फर्जी पाया गया। मीना खलको को किसने मारा आज तक पता नहीं। जो पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे वे बरी हो चुके हैं।
बलरामपुर के लोंगर टोला में मीना खलको के घर में बस अब उनकी यादें हैं। 7 जुलाई 2011 को चांदू पुलिस थाना में करचा गांव के पास नक्सलियों से कथित मुठभेड़ का दावा पुलिस वालों ने किया, फिर कहा इसी मुठभेड़ में मीना को गोली लग गई। हंगामा मचा तो सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। अनिता झा की न्यायिक जांच आयोग ने लगभग 4 साल बाद साल 2015 में अपनी जांच रिपोर्ट दी। आयोग ने अपनी जांच में पाया कि मीना की मौत पुलिस वालों की गोली लगने से हुई। आयोग ने नक्सलियों से मुठभेड़ का दावा भी फर्जी पाया था, जिसके बाद न्यायिक जांच में 42 पुलिस अधिकारियों और जवानों पर हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया। आगे सीआईडी ने जांच की और सिपाही धर्मदत्त धनिया और जीवनलाल रत्नाकर को अपने हथियार से हत्या और थाना प्रभारी निकोदन खेस को झूठे सबूत इकट्ठा करने का आरोपी बनाया। धर्मदत्त एनएसजी में तैनात है, जीवनलाल प्रमोशन के बाद हवलदार बन गए। थाना प्रभारी निकोदन खेस की मौत हो गई। अब मीना के परिवार के इंसाफ की आस भी टूट गई है।
पुलिस लोग बलात्कार करके हम मार ले, गोली मार ले है। बलात्कार हम कर ला तले कह दिल की नक्सली रहे मारू के याद आओ थी तबे ने ईसन हो की हम गुठी गली इसने रही उधर।
अपने सहेली के घर घूमने गई थी हम लोग, सोचे शाम हो गया तो सहेली के यहाँ थी रुक गई होगी तो नहीं आई। दूसरे आदमी हम लोग को बताए कि उसको मार दिए ऐसे, उन लोग बलात्कार करके और मार भी दिए और उसको नक्सली ठहराते हैं। उन लोग गलत काम किए हैं तो उन लोग को तो सजा तो मिलना ही चाहिए। हम लोग के पास तो दरवाजा खटखटाने के लिए रुपया नहीं है।
हैरानी यह है कि अदालत ने अपने फैसले में आरोपियों को रिहा तो कर दिया, लेकिन जांच को घटिया बताते हुए कहा इस प्रकरण में विवेचना समय से ही विवेचना कार्यवाही निम्न स्तर की रही है। विवेचना कार्यवाही के दौरान अभियोजन ने यह स्थापित नहीं किया कि मृतका मीना खलको की हत्या आरोपी गण को आवंटित शस्त्र एवं उन्हें प्रदत्त गोली के लगने से हुई है। अभियोजन ने मात्र साक्षियों की संख्या को अधिक दर्शाया है, परंतु विवेचना के दौरान कथित अपराधों से संबंधित तथ्यों को स्थापित करने में वो पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की लापरवाही के कारण इस प्रकरण में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव रहा, जिससे अभियुक्त संदेह के घेरे में आने पर भी दोष सिद्धि की ओर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि संदेह कितना भी गहरा हो वह साक्ष्य का स्थान कभी नहीं ले सकता।
मीना खलको प्रकरण जब हुआ तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चार्जशीट भी उसी समय हुई, जांच भी उसी समय हुई, तीन तीन जांच, सीआईडी जांच, दंड अधिकारी जांच और न्यायिक जांच। न्यायिक जांच में तो तमाम चीजें निकल कर आ गई। उसके बाद भी हमारी सरकार की प्राथमिकता सबको न्याय दिलाने की है। अगर इसके बाद भी कोई कमी बच जाती है तो उसकी जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी।
सरकार कह रही है तीन तीन जांच हो गई, अदालत ने जांच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा संदेह है लेकिन जांच एजेंसी साक्ष्य नहीं जुटा पाई। अजीब बात है ना, जिस महकमे पर साक्ष्य जुटाने का जिम्मा है वही कटघरे में है, और समाज परिवार को इंतजार है 16 साल की बिटिया के लिए इंसाफ का। रायपुर से जुल्फिकार और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग भारी, एनडीटीवी इंडिया।
ऐसी खबरों पर लौटा कीजिए, पता चलेगा कि जब राजनीति करनी होती है तब नारी का इंसाफ कितना बड़ा मसला हो जाता है, और जब राजनीति की चोरी पकड़ी जाती है तब मसला बनाने वाले लोग भाग जाते हैं। उनका मकसद इतना ही होता है कि समाज को भीड़ में बदला जाए, ऐसी भीड़ जो झूठे किस्सों और फर्जी नायकों को महान मानने के लिए तैयार हो जाए। हैदराबाद एनकाउंटर उसी भीड़ की कहानी है। आप बच गए क्योंकि उस दिन आप प्राइम टाइम देख रहे थे। अब ब्रेक ले लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर विवाद की सुनवाई सोमवार को जिला जज की अदालत में शुरू हुई। संक्षिप्त सुनवाई के बाद जज ने कहा ये कल वो ये फैसला सुनाएंगे कि ये पूरा मामला कैसे सुना जाए। दरअसल जिला अदालत के सामने कई याचिकाएं हैं। एक याचिका 5 महिलाओं ने दायर की है, जिनका कहना है कि उन्हें मस्जिद के भीतर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की रोज इजाजत मिले। इस याचिका को रद्द करने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है। वो 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम का हवाला दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले यही तय हो कि इस कानून के तहत सुनवाई होनी चाहिए या नहीं, तो मंगलवार को सबसे पहले इसी पर फैसला आएगा। चार देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड की शिखर बैठक सोमवार से जापान में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान के 2 दिन के दौरे पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और मेजबान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अपने अपने देशों के प्रतिनिधिमंडलों की अगुवाई कर रहे हैं। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के 34 कंपनियों के बड़े कारोबारियों और सीईओज के साथ बैठक की। भारत और जापान ने अगले 5 साल में भारत में 5 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया है। क्वाड सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी और नई आर्थिक व्यापारिक पहल के तहत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को लॉन्च किया। बाइडेन ने कहा कि 13 देशों ने IPEF का हिस्सा बनना तय किया है। इस पहल से एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते विस्तार के मुकाबले इस पहल को देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने लापता सरकारी कर्मचारियों के मामले में फैमिली पेंशन के नियमों को कुछ उदार बनाया है। अभी तक लापता सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को तब तक फैमिली पेंशन नहीं मिल पाती थी जब तक कि वो मृत घोषित न कर दिए जाएं या उन्हें लापता हुए 7 साल न गुजर जाएं। ऐसे में इन कर्मचारियों के परिवारों के लिए गुजर बसर करना काफी मुश्किल हो जाता था। आतंकवाद प्रभावित इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व के कई इलाकों और नक्सल प्रभावित इलाकों में कई सरकारी कर्मचारी लापता हो जाते थे तो उनके परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन नए आदेश के मुताबिक अगर नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत कवर कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान लापता होता है तो उसके परिवार को तुरंत फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा, और अगर वो कर्मचारी मिल जाता है और नौकरी शुरू कर देता है तो फैमिली पेंशन के तौर पर दी गई रकम बाद में उसके वेतन से धीरे धीरे काटी जा सकती है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए सरकारी आदेश से कई परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।